मेरे यहाँ से सब भाई बहन व्यवस्था हो रहा है। साल में एक मरतबा आप हजरात को जोड़ा जाता है और ये इस साल नहीं आती है, इंशाल्लाह हर साल आप हजरात इंश्योरेंस के लोन के नाम पर जमा होते हैं। तो आप हजरात की कभी बात सोची कि हमको क्यों जमा करते हैं? अरे आप हजरात को समझने वाले लोग हो और समझाने वाले हो, समझने वाले और समझाने वाले। ये छोटे बच्चे तो ठीक है, छोटे ही हैं, मेरी माँ से भी पूछ रहा हूँ जो हमारे बड़े बच्चे हैं। हमारे लिए भी जमा होना होता है, ये कोई खाली फॉर्मेलिटी नहीं है कि भाई और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो चलो ऐसा करो कि स्टूडेंट का भी प्रोग्राम कर लो, ये कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई खाना कोई नहीं है। तो हर एक को सोचना चाहिए कि फिर हमें क्यों जोड़ा जाता है। अगर खाली दिन की बात आपको सुना नहीं है कि भाई इनको दिन की बात सुना नहीं है, तो यहाँ जो आपने प्रोग्राम रखा है उसमें आपको क्या देते हैं, आप उसमें आ जाना और बात सुनकर चले जाए। भाई जुमरात में बयान होता है वो कौन सी बात होती है, दीन की और क्या बोलो, दीन की बात होती है, मसूदों में जी बात होती है वो सारी दीन की बात होती है। लेकिन इसके बाद भी आप हजरात को स्पेशल अलग से जोड़ा जाता है, तो ये सोचने की चीज़ है कि हमें क्यों जोड़ा जाता है। बात असल ये है कि आपकी हमदर्दी में आपको जोड़ा जाता है, आपकी हमदर्दी है। तो आपकी क्या हमदर्दी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जो इस उम्मत की हमदर्दी करे। अद्दीन उन नसीहा, दीन ये है कि उसमें एक दूसरे की हमदर्दी की जाए। उम्मत में कौन कौन लोग हैं? तो उम्मत में छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, शहरी भी है, जहरी भी है। तो इस हुजूर की मेहनत में उम्मत के जितने तबके हैं उन सारे तबकों से हमदर्दी होती है। किसके रास्ते से? क्या तबलीग की मेहनत के रास्ते से, क्योंकि तबलीग की जो मेहनत है वो हुजूर वाली मेहनत है। जब हुजूर अलैहि सलाम हयात थे तो हुजूर खुद फिक्र करते थे, अब हुजूर हमारे दरमियान में नहीं है, तो हुजूर की इस मेहनत के रास्ते से जितने लोग उम्मत के अंदर हैं उन सबकी हमदर्दी होती है। तो बाज़ मरतबा उम्मत को इज्तिमाई तौर पर बात समझाते हैं और बाज़ मरतबा अलग अलग तबकों को जोड़कर समझाते हैं। कभी मनसा लोगों का जोड़ होता है, कभी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का जोड़ होता है, कभी औरतों का होता है, कभी अनपढ़ हालात का होता है, कभी स्टूडेंट्स का होता है। ये सारे तबकों से अलग अलग बात होती है। क्यों? माशाल्लाह हर तबका अपनी जगह पर एक अहमियत रखता है और अल्लाह पाक ने हर तबके को अलग अलग इस्तेदाद दिया है, अलग अलग समझ दी है, अलग अलग इस्तेदाद दी है, अलग अलग सलाहियतें दी है। तो इनसे समझना और समझाना क्या होता है? हर तबके वाले से एक बात समझनी और समझानी होती है। वो ये समझनी और समझानी होती है कि हम जिन जिन मशालों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस मशाले में हमारा ऐसा जीना कैसे हो जाए जिस जीने से जब तक हम दुनिया में रहें हमारा दुनिया का जीना अच्छा हो जाए और जब हम मरें तो हमारा मरना अच्छा हो जाए। हर तबके से बात रखती है और दुनिया में पैदा होने वाला हर आदमी की यही तमन्ना होती है। क्या तमन्ना होती है? पहली तमन्ना ये होती है, पहली तमन्ना कि मैं जब तक जीऊँ सुख चैन में जीऊँ, इसमें जीऊँ सुख और चैन में जीऊँ। अभी आप लोग बच्चे हो इसलिए आपको इसका एहसास कम होता है, क्योंकि आपको सुख पहुंचाने वाले असबाब के दर्जे में आपके वालिदैन मौजूद हैं, आपके वालिदैन मौजूद हैं। लेकिन जब बड़े हों तो अपने वालदा से उनसे स्टोरी पूछना होगा कि हमको आपने जो कपड़े पहनाए थे वो कपड़ों के पैसे कहाँ से लाए थे? मैंने जिद की थी गाड़ी लेने की, तो वो जिद के लिए आपने मेरी गाड़ी के पैसे कहाँ से जमा किए थे? मैंने मोबाइल लेने की जिद की थी तो मैं वो जिद कर रहा था तो आपके पास तो पैसे नहीं थे, आप वो कहाँ से लाए थे मोबाइल लेने के पैसे? मेरी फीस भरने के आप पैसे कहाँ से लाए थे? सारे सुख हमको पहुँचे हैं लेकिन उन सुख को माँ बाप ने हमको कहाँ से पहुँचाया और हमने बताया? हमें नहीं पता होता है। वो माँ बाप के पास में बैठना हो और मिलना हो तो उनसे कुछ कि आपने क्या काम किया था कि इसके वजह से कि हमारे वाले ढूंढ रहे हैं तो ऐसे ऐसे काम बेचारे कर रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं, दिन रात थक रहे हैं, क्यों कि हमारे बच्चों को राहत पहुँच जाए। क्या पहुँच जाए? हमारे बच्चों की फीस अदा हो जाए, हमारे बच्चों का ट्यूशन अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों को सहूलत मिल जाए, हमारे बच्चों के कपड़े दिया हो जाए। तो वो ऐसे ऐसे दुख बर्दाश्त करते हैं और बाजे माँ बाप रात में चादर ओढ़कर रोते हैं बजाय सोने के रोते हैं। क्यों होते हैं? सुबह में बेटे के लिए दरवाजा है, हमारे पास उसको पूरा करने का इंतजाम नहीं है। तो बाज लोग अपना घर गिरवी रख देते हैं, अपना सोना गिरवी रख देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें गिरवी रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं। अभी कुछ दिन आए हुए एक आदमी आया सोना लेकर के, हमें इतना रखने की जरूरत है, पैसे नहीं है, हमारा सोना है, इसको गिरवी रखवा दो और पैसे दिला दो। क्या जरूरत है? मैं घरवा दूंगा। पता नहीं कैसे कैसे कभी अर्ज करता था। आपको अपने सुख दुख का आपको नहीं पता, लेकिन जब उम्र बड़ी होगी तब आपको पता चलेगा। तो आमतौर से सबकी चाहत ये होती है कि हमें सुख के दिन जीना नसीब हो जाए और जब उम्र है तो हमारा मरना अच्छा हो जाए। हर एक की ये तमन्ना होती है, हर एक की ये चाहत होती है। लेकिन ये दोनों चीजें इंसानों को कहाँ से मिलेगी? तो उसका अल्लाह पाक ने एक ही दस्तूर और एक ही कायदा बनाया है। वो क्या बनाया है? एक ही दस्तूर और कायदा बनाया है कि जो अल्लाह को राजी करेगा उसको अल्लाह सुख पहुंचाएंगे और अल्लाह पाक उसके जीने को अच्छा करेंगे, और जो अल्लाह को नाराज नहीं करेगा वो किसी भी शोबे में दुनिया के हो वो सुख नहीं पा सकेगा। ये बात तय है। हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे ताजे हैं जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पैसे आने के बाद बजाय जीने के मरने की तमन्ना कर रहे हैं, मरने को मुकदम कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। दुनिया में मजबूर ये समझता है पैसे आ जाएंगे तो हमें सुख का जीवन मिलेगा। हालांकि दुनिया में एक प्रश्न वो है कि जो मरने के लिए तमन्नाएं कर रहा है। हाँ, हम एक मुल्क में गए, उस मुल्क में मरने का नाम मुंझौल का होता है, होता ना भाई मुझे एडमिशन चाहिए, एडमिशन तो एडमिशन के लिए नाम मुंझौल करते हैं। तो हम हॉलैंड गए तो हमने देखा कि लोग मरने के लिए नाम मुंझौल करवाते, तो वो उनके वहाँ मशीन लगाई हुई है, उसमें जाओ तो वो मशीन से बस उसी वक्त उसको खत्म कर देते हैं, ये खुदकशी करने की जरूरत नहीं। तो मान लो नाम मरने के लिए नाम नोमिनी करते हैं तो उसको टाइम देते हैं, कभी मशीन फुल है तो फला दिन नाम टाइम देता है, मरने का टाइम देता है। हाँ, नेसने की बात नहीं कर रहा हूँ, दिमाग को सोचने की बात कह रहा हूँ। नेदरलैंड इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना खूबसूरत मुल्क है, उन्होंने अपने 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 मुल्क में फिरने के लिए ये रोड है ना, रोड नहीं है, रोड कम है, नहरें ज्यादा है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में कश्ती से जाते हैं, इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, उसको नेदरलैंड हॉलैंड भी कहते हैं। इतना खूबसूरत है कि लोग कश्तियों से जाते हैं, सैर सपाटे करते हैं, मौज करते हैं, और वहाँ ऐसी मशीनें लगी जिसको मरना हो वो अपना नाम नाम मुंझौल करा दे, नहर में डूबकर मरने की जरूरत नहीं, ज्यादातर मरना हम खुद ही उसको दिला देते। तो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा ऐसे मशीन लग गए और वहाँ जब नाम मुंझौल करवाने जा रहे हैं तो टाइम देते हैं खाली टाइम में तुम्हारा। ये क्या हो गया है कि जीने से ज्यादा मरने की तरफ ना उनको अच्छे लगने लगे। क्यों? कि आदमी ने यह सोचा था कि जीने के सुख के लिए ये होना चाहिए वो भी हमारे पास है फिर भी सुख नहीं है, ये होना चाहिए वो भी है फिर भी सुख नहीं है, ये होना चाहिए फिर भी सुख नहीं है। हाँ, लोग बाजे लोग पैसों की वजह से सुख समझते हैं, बाजे लोग बंदों की वजह से, बाजे लोग और अस्पताल से, बाजे लोग गुना में सुख समझते हैं, गुना करेंगे ये गुना करेंगे सब मजे आ रहे हैं, ये गुना करेंगे गुना करते करते तो आखिर गुना वो भी कर चुके हैं, अब उसके आगे की तमन्ना है, अब उसके आगे गुना है भी, अब क्या करेंगे? अब कुछ भी नहीं, अब सुख पाने के लिए पाजिज हो गए तो मर जाते हैं। रोज अखबार में आप पढ़ो, रोज अखबार में लोग खुदकशी करते हैं। तो ये चीजें ही बता रही है कि सुख जो है वो चीजों में नहीं है और लोगों के पास नहीं है। फिर सुख अल्लाह जिसके लिए तय करते हैं उसके लिए सुख मिलेगा, वो चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो कैसा भी हो, अल्लाह पाक उसकी उस शक्ल में सुख को भरते हैं, अल्लाह पाक आसमानों से सुख को उतारते हैं। हमारा ये एक बचपना होता है, जो आप बच्चे हो ना, अभी देखो हम आपको कितनी मरतबा कह चुके हैं कि बातें ना करो, तो भी ये बातें कर रहे हैं और भी बच्चे बातें करते हैं। ये समझ इसके लिए इस बात को समझा रहा है कि हम बात नहीं समझ रहे हैं, और कोई बात नहीं समझ रहे हैं कि उम्र ऐसी है कि बात नहीं समझता, तो बड़े भी बात नहीं समझे तो छोटे क्या समझेंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम इस उम्र में बात समझने पर पड़े। इसमें वो बच्चे खुशन जो 15 साल से ऊपर के हैं वो अपने आप को बच्चे ना समझे, जो बच्चे 15 साल से ऊपर के हो चुके वो अपने आप को बच्चे ना समझे, उनके लिए अल्लाह ने फरिश्ते तय कर दिए कराम उनका जबीर, क्या वो अल्लाह के वहां बड़े हो चुके हैं, दुनिया वालों की नजर में वो चाहे छोटे हैं लेकिन ये अल्लाह के नजर में बड़े हो चुके, अल्लाह पाक ने उनके तो फरिश्ते तय कर दिए, उनके हर अच्छे बुरे को वो फरिश्ते मोड़ बनते हैं मोड़। और मुझे क्या करना चाहिए कि जब मैं अल्लाह के नजर में बड़ा हो गया तो मुझे एहसास जिम्मेदारी के साथ जीने पर पड़ना चाहिए, एहसास जिम्मेदारी के साथ जीने पर पड़ना चाहिए। क्यों? कि अपने लिए हर चीज मोड़ हो रही है, अगर मेरे जीने का तरीका अच्छा हो गया तो मेरे नतीजे अच्छे आएंगे, और खुदा न करे अगर मेरा जीने का तरीका खराब हो गया तो मेरे नतीजे खराब आएंगे, इसका मुझे एहसास होना चाहिए। हाँ, ये इसीलिए हम बात समझाते हैं, जैसे और उम्र के सारे तबकों को बात समझाते हैं, ऐसे आप स्टूडेंट्स को भी यहाँ लाकर बात समझाते हैं। हालांकि ये बात पब्लिक वालों को समझाने की नहीं है, ये किसको समझाने की है? आपके माँ बाप को समझाने की है। वो घर में बैठा कर आपको बात करते हैं कि मेरे बेटे तेरी 15 साल की उम्र हो गई, अब देख तू संभल संभल कर कदम उठाना। हम अब तक तेरे माँ बाप थे तो माँ बाप के सारे असर तुझ पर पड़ रहे थे, अब तू जो कुछ करेगा तेरी हर चीज मोड़ होगी, और मोड़ होकर या तो नेकियों का एक एक जखीरा जमा होगा या बुराइयों का होगा, फिर उसके बाद अगर तेरी अच्छाइयाँ हुई है तो तुझे तेरा अल्लाह तेरी अच्छाइयों का बदला देंगे, और खुदा ना करे तुझसे बुराइयां हुई हैं तो तुझे तेरी बुराइयों का बदला भुगतना पड़ेगा और तुझे अकेले को भुगतना पड़ेगा, हम तेरे भागीदार नहीं हो सकेंगे। ये बचपन में समझ में नहीं आता लेकिन बार बार ये माँ बाप के जिम्मे हैं, बच्चों को समझाते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मोहल्लों में हमारे घरों में ये बात को समझाने का रिवाज खत्म हो गया, इसलिए समझने की मेहनत के रास्ते से अब ये स्कूलों या मस्जिद में जमा करके आपको ये बात समझाई जाती है। क्या बात समझाई जाती है? कि हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं वो हमदर्दी में कर रहे हैं, आप हमारे भाई हो, हम आपके भाई हैं, हम आपका ये चाहते हैं कि जब तक आप इस दुनिया में रहो अल्लाह आपको सुख के दिन दिखा दे और आप चैन का अल्लाह आपको चैन का जीना नसीब कर दे, और जिस दिन हम मरे अल्लाह हमारे मरने को अच्छा कर दे, अल्लाह हमारे मरने को अच्छा कर दे, उसके बाद क्या समझाते हैं जो हम सब चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कायदा है? क्या सबके लिए एक ही कायदा है, कोई दूसरा कायदा है? वो क्या कायदा है कि जो आदमी जहां है वहां वो इस तरह रहे उससे उसका अल्लाह नाराज ना, अगर कोई ताजिब की तरफ में है तो इस तरह रहे उससे उसका अल्लाह नाराज ना, अगर कोई काश्तकारी में है खेती में है उससे वो ऐसा रहे उससे उसका अल्लाह नाराज ना, और कोई अगर हुकूमत में है तो वो इस तरह रहे उससे उसका अल्लाह नाराज ना। क्यों? अगर अल्लाह नाराज हो गया तो ये कायनात अल्लाह की, ये पूरी कायनात अल्लाह की है। किसकी है कायनात? बोलो। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कायनात अल्लाह की है, अलाहुल खल्क, कि कायनात अल्लाह की है। फिर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि इस कायनात, ये कायनात जब अल्लाह की है तो इस कायनात में एक अल्लाह की बात चलती है। किसकी बात चलती है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लोगों से कहो अलाहुल खल्क वल अम्र, कह लोगो इस दुनिया में तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा, अल्लाह जो चाहेंगे वो होगा। इसलिए अपने के दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें चाहते हैं लेकिन उनकी चाहते पूरी नहीं होती। अगर इंसानों के हाथ में उनके मसले होते तो उनकी चाहते सबकी पूरी हो जाती। देखो हमने 10वीं में थे तो हम सब ये चाहते थे हमारे बहुत अच्छे नंबर आए लेकिन सबके नहीं आए, 12वीं में थे तो सब ये चाहते थे कैसे अच्छे नंबर आए तो मेडिकल में जाए लेकिन नहीं आए, तो हमारी चाहत पूरी नहीं हुई। अच्छा उसके बाद बहुत सारे लोग हुए हैं कि जो पढ़ाई पूरी की उन्होंने कर ली, पढ़ाई पूरी कर ली, अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, ठीक है, फिर उनको उम्मीद है कि हमें अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सर्विस मिलेगी। क्या हर पढ़ाई पूरी करने वाले को अच्छी जॉब और सर्विस मिल जाती है? جب آپ نے دیکھا زیادہ تھے تو میں زیادہ میں گیا کہ بچہ خدمت کرتا تھا ایک دکان والے کا, میں نے کہا یہ کون ہے, کہ یہ فلاں فلاں ڈگری حاصل کیا ہوا ہے, اس نے یہ ڈگری حاصل کیا ہے لیکن سروس میں ملے تو یہ نوکری کروائی کسی کو, کسی کو نوکری تو نہیں, کتنے 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 اچھے پڑھے لکھے مزدوریاں کرتے ہیں, تو یہ طے نہیں ہے کہ ہم پڑھیں گے تو نتیجے وہ آئیں گے جو ہم چاہیں گے, اور اگر مان لو ہماری پڑھائی ہو گئی پوری تو یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں ہماری چاہتیں پوری ہو جائیں گی, یہ بھی ضروری نہیں ہے, یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ جیسا چاہیں ایسا چلاتے ہیں, اللہ جیسا چاہیں ایسا چلاتے ہیں, بس لوگ وہ ہیں جو کچھ بھی نہیں پڑھے گے کچھ بھی نہیں پڑھے لیکن اللہ پاک نے ان کے لیے سکھ کے چائے کا طے کر دیے, ان کے پاس 20 آدمی کام کرتے ہیں, 500 آدمی ان کے پاس کام کرتے ہیں, ہمارے ایک دوست کے کارخانہ ہے وہ اپنے کارخانے میں ان کو لے گئے تو کارخانے کی پوری ملاقات کر رہے ہیں, میں نے کہا کتنے آدمی کام کرتے ہیں, 5,000 آدمی میرے پاس کام کرتے ہیں, وہ پہلے کی نہیں اور ان کے پاس 5,000 آدمی کام کرتے ہیں, ایک ہمارے دوست ہیں وہ اپنے وہاں ہمارے واسطہ تھی تو میں نے پوچھا کتنے وہاں وہ جنس کے پوائنٹ کرتے ہیں, میں نے کہا کتنے آدمی آپ کے پاس کام کرتے ہیں, کہا 12,000 ہو گیا, کتنے کام کرتے ہیں 12,000, یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ پاک بغیر کسی کے سب کچھ دے دیں, اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ سب کچھ کے ہوئے پیدا سب کچھ کر رہے ہیں, یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے, یہ مبارک بیان کے راستے سے ہر آدمی کو اس کو سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرے جس پہ ہم جی رہے ہیں, کوئی پیسوں والا پیسوں پر, کوئی فیکٹری والا فیکٹری پر, ہاں کوئی کسی چیز پر کوئی بھروسہ نہ کرے, اگر اللہ اس میں چڑھتی لائیں گے تو چڑھتی ہمیں ایسی شروع ہوگی کہ چڑھتی چلے جائیں گے, اور اگر اللہ اس پر پڑھتی لائیں گے تو اللہ ایسی پڑھتی لائیں گے کہ وہ پڑھتی ایسی ہوگی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم اپنی پڑھتی سے بچ نہیں سکیں گے, ہاں ہم اپنے ہم لوگ ابھی چیلے میں تھے دو چار دنوں میں آئے تو ایک فیکٹری بہت بڑی فیکٹری بہت بڑی فیکٹری, ہم اس ضلع کا پورا بڑا اجتماع بھرا تھا, بہت بڑا اجتماع, آپ اندازہ کرو پورا اجتماع جس فیکٹری میں ہوتا ہو وہ فیکٹری کتنی بڑی ہوگی, کتنی بڑی ہوگی, اور وہ آدمی اتنا بھاری بھرکم تھا اس مرتبہ ان کو اپنے پارٹی کا جو الیکشن ہو اس کی سیٹ اس کو ملی تھی, اس کی سیٹ اس کو ملی گئی تھی ایم ایل اے کا الیکشن لڑنے کے لیے, تو اس کے گھر پر ہم ملاقات میں گئے تھے, تو اس نے ان کا بہت اکرام کیا, اور آئندہ کا ایک اشتہار ان کے من میں ستمبر میں ان کی فیکٹری میں, ہم گئے بڑے تھے فیکٹری ہمیشہ پتا نہیں کیوں کہ گورنمنٹ منظوری نہیں چل رہی تھی اور بند ہو گئی, اتنی بڑی فیکٹری جس نے 13 ضلع کا اشتہار, کتنے ضلع کا اشتہار, 13 ضلعوں کا اجتماع جس فیکٹری میں ہونے کو تالا لگ گیا, اور اتنا بڑا اس کا کام لیکن اس کو تالا لگ گیا ہے کہ سارے اسباب موجود ہیں وہ نہیں کر پا رہے, سارے اسباب موجود ہیں, ہمیں آپ کے یہ ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے اس بڑا کھنڈ کے راستے سے کہ ہم اپنے پڑھنے کے زمانے میں ہی اللہ کرے کہ اس کہنے سننے کے راستے سے ان زندگیوں پر پڑھ جائیں جس زندگیوں سے ہم اللہ کے رحم و کرم میں ہیں, ہم اللہ کے رحم و کرم میں ہیں اور اللہ کا رحم و کرم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور ہر پڑھنے والا قدم اللہ کے رحمت کو ہمارے ساتھ رہنے والا ہے, اس پڑھنے کی محنت کے راستے سے جو آپ کو جمع کر کے بات کرنا ہوتا ہے, میں اسے یہ جو ابھی آپ کو پوچھ رہے تھے کہ آپ نماز پڑھتے ہو, آپ کو پوچھ رہے تھے کہ آپ کچھ دن کا کام کرتے ہو, تو آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ اس لیے مجھے لگتا ہے مسلمان ہے ہم کیا کریں, ہم نماز پڑھیں, ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم تعلیم پڑھیں, یہ خالی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے پوچھا تھا, یہ آپ نے خالی نماز پڑھنے کے لیے یہ تعلیم دینے کے لیے پوچھا تھا, تو پھر پھر کہیں نے پوچھا تھا, کہیں آپ نے اس لیے پوچھا تھا کہ ہم کس ماحول میں پڑھے رہے ہیں, ہمارے اسکول کا ماحول عام طور سے غفلت کا ماحول ہوتا ہے, غفلت کا, اور اگر غفلت کے ماحول میں یہ اس طرح ایمان والا غفلت کے ساتھ رہا اور غفلت کے ساتھ پڑھائی میں مشغول ہوا اور اگر غفلت کے ساتھ آگے بڑھا تو اس میں دو چار چیزیں ایسی پیدا ہوگی جو اس کا ستیہ ناش کر دے گا, ارے وہ کیا چیزیں ہیں, کیا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر یہ غفلت میں سے نہیں نکلا تو اس کا پڑھائی میں بھی دھیان نہیں ہوگا, پڑھائی میں دھیان نہیں ہوگا اس کے ماں باپ کی جان لگے گی لیکن اس کے پڑھائی کے نتیجے اچھے نہیں آئیں گے, دوسرا اس غفلت کے ماحول میں وہ اپنی جی چاہی کرے گا, جی چاہی اور جی چاہی کی تو جی چاہی میں گناہ کرتے کرتے ایسے ایسے گناہ کرے گا کہ اللہ کی پناہ جھوڑے گا, ہم لوگ ابھی کیرل گئے تھے تو وہاں ایم بی بی ایس کی کالج تھے تو ایک مسلمان لڑکا اپنے راجستھان کا یہ بانسواڑا وہاں پڑھتا ہے وہ ہمارے پاس آیا کیرل کا بانسواڑا, یہ اتنے مسلمان بچے اور اتنے مسلمان بچے ہیں लेकिन अल्लाह की बना, अल्लाह की बना, अल्लाह की बना। क्या मैं भी बेहद कैसे करेगा, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, ऐसे गुनाहों में ये मुबतला है। आप अपने दिल के नीचे वो इनसे बात करें। मैंने उनको कहा उस गुनाह के माहौल में उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनकी अपने ज़ियारत करते हैं, उनको ज़ियारत पर बुलाएंगे। तो वो हमने उनकी ज़ियारत की तो मुसलमान 150 बच्चे उस कॉलेज के आए, 150 बच्चे। हमने उनसे थोड़ी सी बात की। अब ये क्या हो रहा है कि उस गफलत के माहौल में अल्लाह की फिलन मिलन नाफरमानी हो रही। अब तो फिलन मिलन नाफरमानी हुई तो अब ये बच्चे उन गुनाहों के साथ बड़े हुए। उन बच्चों को ये नहीं पता है ये गुनाहों की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। ये गुनाह ठीक है, हम गुना करके भूल जाएंगे, लेकिन ये हमारी जिंदगी में आग लगा देगी। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जो अच्छा करेगा उसको अच्छे का बदला मिलेगा। मन आमना सालेह फले नफसे, जो अच्छा करेगा उसको हर अच्छे का नतीजा उसके ऊपर देखना है। वमन असा फअलैह, और जिसने चुके की है चुके उनको उनकी चुकों को भुगतना है, भुगतना है और भुगतना है। चुके बचपना होता है उसमें बातें समझ में नहीं आती, जैसे आप ही आप हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन कोई हंसी कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, जैसे आप भी ये बातें सुन रहे हैं। ये इसका एहसास है कि हम शऊर के साथ, एहसास के साथ साथ उसको नहीं ले रहे। जब मस्जिद के माहौल में हमारे अंदर ये नफरत होगी तो हमारे स्कूलों के माहौल में, हमारे कॉलेज के माहौल में जो नफरत होगी उसको कोई बयान कर सकता है? ये तो अल्लाह का एहसास कर रहा है, किसी ना किसी दर्जे में तंबल की लड़ाई चला दी तो उसमें थोड़ा सा संभलना हो रहा है, झंझूड़ना हो रहा है, एक दूसरे को मतवजह करना हो रहा है। हाँ लगना, अगर इतना भी छोड़ दे तो पता नहीं हमारा मिलना क्यों चले जाएगा, तो नुकसान किसका होगा? ये तबलीग वालों का नुकसान नहीं होगा, इन हमारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। ये जो हमारे बच्चे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? कहीं को अगर समझाने वाला नहीं होगा और उनके साथ बात करने वाला नहीं होगा तो फिर उनके स्कूल और कॉलेज का जो माहौल होगा वो सब पर असर करता है, सब पर। कोई भी नौकरी नहीं आएगा। हमारे एक डॉक्टर है मोहम्मद हुसैन, बड़ोदर में डॉक्टर है, तो वो बेचारा दावत करता है, बुलाने जाता कि हम लोग गए थे, उसने दावत की थी, तो उसके बाद हम लोग गए तो पढ़ना नहीं सुनते सुनाते मिल रहा है साहब। स्कूलों का माहौल ऐसा असर ना होता है वो कह रहा था कि हम लोग या विद्यानगर में पढ़ते थे, विद्यानगर तो हमारे साथ हमारे मुसलमान बच्चे हमने अपनी नामों से देखी जो गुरुआ में आई है और बादशाह लड़कियाँ, बादशाह लड़कियाँ। तो हमारे साथ हमारे स्कूल कॉलेज के माहौल में 6 महीने वो गुजारती थी और 6 महीने स्कूल कॉलेज का माहौल उसका ऐसा असर करता था कि उसके कपड़े कुर्ता तो उतर जाता था, इस्लामी लिबास भी उतर जाता था। फिर उन्होंने मिसाल दी कि हम उन लड़कियों को जानते हुए गुरुआ में आई थी, फिर उन लड़कियों को हमने देखा है कि जो बाबा के साथ अपने अपनी जी चाही करते थे। ये स्कूलों की फिजा है, स्कूलों का ये माहौल है, ये हमारे मेहनत के रास्ते से जो आप तवज्जो करना होता है वो आपकी हमदर्दी में तवज्जो करना होता है। क्या हमदर्दी? कि हम सजाग और जागरूक जिंदगी जीने वाले हैं, हम अपने आप को बच्चे में समझे, बच्चे में समझे। आपकी हर चीज का असर आप पर पड़ रहा है, अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब सर पर हाथ पकड़ कर आप बैठोगे कि मेरा ये क्या अंजाम हुआ, कि मैंने इतनी पढ़ाई की और मुझे जॉब नहीं मिली। जॉब मिल गई उस जॉब में सुकून नहीं होगा, जॉब मिल गई सुकून है, दूसरे 50 रास्ते ऐसे खुल जाएंगे जो हम चैन कर जी नहीं सकेंगे। इसलिए कि जरा भी कचरा आएगा ना वो कचरा गाड़ी को रोक लेगा, जरा भी कहीं कचरा आया वो कचरा गाड़ियों को रोक लेता है। हाँ अच्छी खासी 50 लाख की गाड़ी है लेकिन ऑयल पंप में कचरा आ गया, डीजल पंप में कचरा आ गया तो गाड़ी बड़ी हो जाएगी, खत्म था। क्या हुआ? ये कचरा आ गया। हम लोग परसों गए तो उनसे बड़ी आ रहे थे गाड़ी में, गाड़ी बड़ी हो गई। क्या हुआ? कची एयर आ गई, गाड़ी अच्छी खासी जोरदार है, कची एयर आ गई है। अब वो कुछ ऐसा पंप लगा वो एयर पंप भी गाड़ी चले, थोड़ी सी एयर, थोड़ा सा कचरा, पूरी पूरी गाड़ी 50 लाख की गाड़ियों में रोक देती। हाँ अगर हमारे समझता में कचरे जमा हो गए उन कचरों को भी हम कचरे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी उम्र गुजरने के बाद उसके पद पर उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस बचपन में हमें एहसास हो जाए, हमारी एहसास जिम्मेदारी का हमें एहसास हो जाए। हमें अभी मस्जिद में अलग से बैठने का भी एहसास नहीं है। अगर हम तो कहीं शोर मारता, जो अभी शोर आ रहा है ना वो शोर मस्जिद में ना होता, ये हमारे कमजोरी की बात है कि शोर आ रहा है। तो जब मस्जिद में अभी नहीं आया तो वो फिजा में कैसे आएगा? इसलिए बात संध्या समझाई जा रही है कि हमारा एक एक बच्चा अलग अलग उस एहसास से निकल जाएगा और ये
रास्ता क्या है? तो उसका रास्ता एक ही है, उसका रास्ता ये है कि जैसे वो सबके रास्ते हैं ऐसे आपका भी रास्ता हुई है। सब जगह कही जा रही है कि तुम जहां जिस मशाले में हो उस अपने मशाले में इस तरह से हो तुमसे तुम्हारा अल्लाह नाराज ना हो। अल्लाह नाराजी किससे होता है? कि अल्लाह की बात को मानते हुए अपनी अपनी लाइनों में रहने से अल्लाह राजी होता है। अगर भाई अपने मामले में तिजारत को राजी करता है तो अल्लाह उससे इतना राजी होता है, इतना राजी होता है कि किताबों में आता है कि जब वो मरेगा तो अल्लाह उसका हशर, उसका हशर अल्लाह पाक नबियों के साथ करेगा। अरे भाई तुम बहुत मानदार हो, उसके हिसाब किताब लो, कहना ये अपनी ईमानदारी में ऐसे रहा है उसको अल्लाह को राजी किया है तो कोई इसका हिसाब किताब का मसला ही नहीं, इसको हम नबियों के साथ हशर। ओहो, एक आदमी को मैंने बादशाह बनाया, बगैर वो बादशाह बना उसने अपने आप को जीना सिखा लिया और बादशाह बनने के आदत उसने सीख लिए और सलीके से रहा, तो इतनी बड़ी बादशाह की कुर्सी पर बैठना बस अगर वो इंसाफ के साथ रहा है तो अल्लाह के मन उसको इतना कामयाब कर देगा कि जिस दिन वो मरेगा मरने के साथ अल्लाह पाक उसको अपने अर्श के नीचे जगह देगा, लोग तो हिसाब किताब ना होंगे और उसकी जगह अर्श के नीचे होगी। तो इस दुनिया में बादशाह बनना बुरा नहीं, इस दुनिया में मालदार बनना बुरा नहीं, इस दुनिया में कोई भी लाइफ करना बुरा नहीं है, बस एक बात है कि अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह के रहम और करम में रहे तो अपने अपने आप कैसे चलाएंगे जिससे उनसे अल्लाह नाराज हो। ये भी आपको तो कर्जा ही पूछ रहे थे कि आप कुरान पढ़ते हो, तालीम करते हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि हमारे बच्चों को हर साल जब ये जोड़ होता है ना उस जोड़ में कुछ अमल हम समझाते हैं, ये अमल भी समझाते हैं कि वो अमल ऐसे हैं कि अगर उन अमल के साथ बच्चे स्कूल और कॉलेज के माहौल में रहे तो अल्लाह की नजर से उम्मीद है कि ये बच्चे गलत रुख पर नहीं जाएंगे, ये अमल इनको संभाल लेंगे, संभाल लेंगे, ये महफूज हो जाएंगे। जैसे गर्म चाय होती है, गर्म चाय वो उसको पहले छोड़ दो ठंडी हो जाएगी, लेकिन उस गर्म चाय की हिफाजत के जरिए थर्मस है, थर्मस का मतलब वो चाय महफूज हो जाएगी। भाई केला है, केला वो छिलके छिलके में पैक है उस पर कोई कीड़ा नहीं बैठेगा, लेकिन उसका छिलका उतार दिया तो उस पर किस्म किस्म के कीड़े बैठना शुरू हो जाएंगे, उस पर किस्म किस्म के कीड़े बैठेंगे, मक्खियां बैठेंगी, वो गंदा हो जाएगा, बैक्टीरिया वाला हो जाएगा। कैसे हर चीज की हिफाजत के असबाब होते हैं, शक्लें होती हैं, हमारे बच्चों की ये हिफाजत के असबाब के लिए अगर आपको ये जो बात समझाई जाती है कि अच्छा आप वहां अल्लाह रसूल की बात करते हो, अभी 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 बशीर साहब पूछ रहे थे कि आप तालीम करते हो, इसका क्या मतलब? आपको तालीम करना का मतलब नहीं है, तो आपको मतलब यह है कि आपकी स्कूल और कॉलेज की जो फिजा है वहां पता नहीं कैसे कैसे लाइनें होती है, कैसे कैसे खुराकात होते हैं, अब उसमें कम से कम आदमी 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जब तालीम के आवाज को सुनता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन पर अल्लाह का डर बैठता है, अल्लाह का खौफ बैठता है, वो डर और खौफ उसको उन लायक से और गुनाह से बचाता है। ये इसके लिए बताने का पूछा, अभी हमारे मास्टर मास्टर साहब ने आपको पूछा अच्छा नमाज पढ़ते हो, अक्सर हम तो हम देखें कि क्यों हमारे स्कूल और कॉलेज के माहौल में नमाजों का रिवाज है, अगर एक मुसलमान वो अपने नमाज के रिवाज से निकल गया अब उसका कितना बड़ा भारी नुकसान होगा। किताबों में आता है कि जिस मुसलमान की नमाज छूट गई सबसे पहली बात यह है कि वो अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल गया। ओहो, अगर वो मुसलमान अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल गया अब उसका रह क्या गया? हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह कह रहे हैं मैं उससे बरी हूं जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाए। अगर हमारा मुसलमान अगर अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल गया पता नहीं ये किससे किसके हवाले हो जाएगा। दूसरी जगह रिवायत में आता है कि जिस मुसलमान की नमाज छूट जाती है वो शैतान के लिए दीवाना बनाना आसान होता है। किताबों में आता है नमाज के आदमी शैतान पर भारी होता है। अब एक बच्चा अगर नमाज दिया है तो शैतान लाख कोशिश कर ले इंशाल्लाह उस पर वो भारी हो जाएगा, लेकिन एक बच्चे की स्कूल के माहौल में नमाज नहीं हो रही है अब शैतान 2 मिनट में उसको निकाला हो जाएगा। अब निकाला बनाकर वो खाली ऐसा नहीं करेगा कि नमाज छोड़वाएगा, उसकी नमाज छोड़ गई अब उसके बाद वो उसको 50 गुना करवाएगा, 50 गुना करवाएगा, अब वो हर गुना अपने साथ बदल देता है। ये तो मैंने आपको मिसाल दी कि एक तालीम का अमल खाली तालीम नहीं है, ये नमाज के लिए आपको पूछा होगा कि नमाज के लिए नहीं कि अगर वो हो गए एक तो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ गया शैतान पर भारी हो गया, फिर उसके बाद नमाजी आदमी वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है, फरिश्तों का कि मिलने की चीज अलग होगी और बचने की चीज अलग होगी। आप इसको खाली ऐसा समझे कि सारे तो खाली नमाज की बात कर रहे हैं, हाँ आपको बचाने की बात कह रहे हैं, संभालने की बात कह रहे हैं। अक्सर मन में ये बात है कि अगर उनको माहौल नहीं मिलता तो आप तो स्कूल की बात कर रहे हो, लोग रेगुलर में बात नहीं, लोग उम्र में जाते हैं। हमने देखा है पूरी जहाज मुसलमानों से बड़ी है, बड़ी है। नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है, लेकिन चूंकि नमाज पढ़ने का रिवाज नहीं पड़ा, आदत नहीं पड़ी है, तो फ्लाइट वापस होती है तो उम्र करके आते हैं, एक बार की नमाज पढ़ते हैं, वरना पूरी फ्लाइट कोई नमाज नहीं, पूरी पूरी फ्लाइट। कहां से आ रहे हैं? बैतुल्ला से आ रहे हैं। अरे भाई हज करके आ रहे हैं, हज करके आते हैं, फ्लाइट में नमाज नहीं पढ़ते। जब माहौल नहीं होता तो बैतुल्ला से आने वाले भी नमाज नहीं पढ़ते। तब स्कूल और कॉलेज का माहौल है जब रिवाज नहीं होगा और हमारा रिवाज नहीं डाला, हमने माहौल नहीं बनाया, तो हम जो जैसे बच्चे हमारे हो जाते हैं, ऐसे कुछ काम हम नहीं करना चाहेंगे लेकिन हमको वो काम करने पड़ेंगे। नेकी क्या मान तुमने 500 गुनाहों से बचा लिया, नेकी क्या मान? हमने देखा बहुत मरतबा हम पैन में बैठे होते हैं, पैन में तो उसमें ये कुछ हिजड़े लग रहे हैं, हिजड़े पैन में होते हैं बहुत सारे ट्रेनों में, तो आते हैं तो सारे रस्तेरों को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन जहां सपा को देखते हैं तो आपने भी तजर्बा देखा होगा फौरन निकल जाते हैं। क्यों? कि नहीं भाई अच्छे लगे इनको नहीं छोड़, ये टोला तो अक्सर खड़े होते हैं, लेकिन जब सपा को किसी को देखते हैं तो फौरन वो वहां से साइड होकर निकल जाते हैं। बोला ऐसा होता है नहीं होता कि नेकी नेकी भाइयों को धक्का देती है, इन्नल हसना युज़हिबुन सय्यिआत, ऐ लोगों नेकी वाले बनो बुराइयां तुमसे तो बहुत छटती चली जाएगी छटती। अब एक आपने देखा, एक मिसाल के तौर पर एक आपने देखा, एक लड़की ने देखा कि ये लड़का इसको देखता है तो लड़के उसके तरफ मुतवज्जो हो गए, लेकिन उस लड़की ने देखा कि ये लड़का ऐसा पसंद नहीं करता, वो लड़की आपकी तरफ मुतवज्जो होगी क्यों ना? वो तो गंदी लड़कियां गंदे लड़कों की तरफ मुतवज्जो होगी, अच्छों की तरफ नहीं होगी, कि मेरे को पहाड़ में मिल जाए। तो नेकियां आदमी को गुनाहों से बचा लेती है, और अगर आपके नेकी वाला नहीं बनता तो बनना चाहे तो भी उसको 50 गुना करने पड़ते हैं, नहीं जाने के बावजूद 500 गुनाहों में उसको मुब्तला होना पड़ता है, और फिर अगर वो उसमें मुब्तला हो गया तो आप उसको अल्लाह की आफत से कोई नहीं बचा सकता, उसको लंबे लंबे वजीफे, लंबी लंबी तस्बीह, लंबी लंबी दुआएं उसको नहीं बचा सकती है। फिर ये जितनी बात ये जो आफतें आती है वो आफतें उन्हीं गुनाहों का पादाश, उन्हीं गुनाहों के नतीजे में होती है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं एक बात के लोगों से एक बात कहो, क्या कहो? कि जिसके ऊपर जितने भी हालात हैं वो हालात में हमने किसी पर कोई जुल्म नहीं किया, कहता अपने बंदों के हक में जुल्म नहीं करते।
लेकिन पढ़ाई के बाद उनको जॉब नहीं मिली, सर्विस नहीं मिली, 500 लोग सर्विस
वह हमारे सामने सर न उठाए, वह हमारे सामने आंखें न निकाले, वरना इतनी बड़ी भारी दर्शन के लिए हमारे छोटे छोटे परिंदे काफी है। इतना बड़ा नमरू, इतना उसने बड़ा खुदाई का दावा किया और भारी भारी अल्लाह पाक ने एक पत्थर से उसका काम कर दिया। अल्लाह इंसानों को समझाते हैं कि हमारे सामने कोई आस्तीन न चढ़ाए, हम जिस रास्ते से इसकी पकड़ करेंगे वो इन्हें पता भी नहीं है, ऐसे हम रास्ते को खींचेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मैं ढील देता हूँ, उंगली लगू मैं इनको ढील देता हूँ, और जब मैं खींचता हूँ इन्हें पता भी नहीं होता कि ऐसे रास्ते खींचते हैं। और अल्लाह कहते हैं जब मेरी पकड़ होती है, मेरी पकड़ बड़ी सख्त होती है, कि मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। ये हमें यहाँ हमें वो नौबत बनाए और हम उस हालत में ना घेरे में आए, इसके लिए बचपन से हमको ये समझाने की मेहनत हो रही है कि हम अपने आप को बच्चे समझ कर गफलत न रहे। ये बचपन में ही सारी चीजें समझने का समाना है और बचपन में ही अच्छा बनने का समाना है, बचपन में ही। और तुम जैसी आदतों के मालिक बचपन में पड़ गए ना, ये बचपन का जमाना बनने का जमाना होगा। कौन सा जमाना बनने का जमाना?
सौ गुना कर सकता है। वो ये कर सुना रही है कि एक मर्तबा मुझे उसने आ
उसकी अपनी तरबियत ऐसी हुई है कि वो इन चीजों से बच गया, अल्लाह ने उसको बचा लिया। जब बादशाह ने कारदारी सुनी, बादशाह ने कह दिया अच्छा अब इसको कदम बढ़ा, कदम बढ़ा, उसके कदम का ऐलान कर दिया। ये लड़की जो इसको गुनाह बनाने के लिए आई थी, अल्लाह ने उस लड़की की नेकी का असर उस औरत पर डाला। क्या औरत पर असर पड़ा? वो औरत ने जब सुना कि बादशाह ने इसको मारने का फैसला कर दिया, तो सब लोग रात को सो गए कि अचानक रात में आई कमरा खोला और कहा तो भाई मुझे तेरे साथ 3 दिन इस कमरे में रखा था तुझे गुनाह में लगाने के लिए, लेकिन तूने अपने ऊपर ऐसी ताकत वाली मेहनत की है कि मैं सारी ताकत के बाद भी तुझे गुनाह में मुब्तला नहीं कर सकी। अब मैंने तेरा रिपोर्ट दिया तो तेरा फैसला ये हुआ है कि इस आदमी को कत्ल कर देना है, तो तेरा वारंट कत्ल का निकल चुका है, लेकिन मुझे तेरे लिए दया दिल में आ गई कि तेरे जैसे लोग धरती पर नहीं है, तुम्हारे जैसे बुरे लोग इस धरती पर खत्म हो गए। मेरा दिल यही चाहता कि तुझे मार दिया जाए, तो मैं रातों रात तुझे इस कमरे से भगाने के लिए आई कि मैं तुझे इस रास्ते से भगाने का भागने का रास्ता बताती हूँ, तू जल्दी जल्दी यहां से भागकर चला जा ताकि सुबह होने से पहले तू इस मुल्क की बॉर्डर छोड़ दे, तू कत्ल से बच जाए। तेरा जैसा आदमी इस जमीन पर नहीं होता, तुझे तो जिंदा रहना चाहिए। फिर कमरे के बाहर लेकर आई और उस जमाने में तो ये घड़ी घंटे नहीं होते थे, ये कंपास तो होते नहीं थे कि भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कैसे है वो पता चले, वो सितारों से दुनिया देखते थे, सितारे कहाँ हैं। तो उसने एक सितारा देखा और कहा देख ये जो सितारा तुझे मैं बताती हूँ ये सितारा देख, और उस सितारे की लाइन में चलते रहे, उस सितारे को अपनी दाहिनी तरफ रखो, अगर तूने इस सितारे की लाइन पकड़ ली और रात तेजी से चले, तू जब सुबह चलेगा तो ये सितारा तुझे इराक ले जाएगा, बंदा तो पहुंच चुका होगा। ये तो मैंने तेरे साथ तेरी भलाई की वजह से मेरे दिल में लगाते तेरे लिए भाग डाली, अब तेरे नसीब की बात है कि रास्ते में तो पकड़ा जाएगा, तेरे नसीब की बात है, बाकी तेरे लिए मेरे दिल में बातें आ रही है कि मैं तुझे मंजूर छा। एक आदमी बना हुआ है, 3 दिन कैद किया गया, पूरी उसकी ताकत लगा ली, लेकिन अल्लाह ने उसको उससे बचा लिया। फिर उसके बाद जिसको बनाने के लिए अल्लाह को जो बादशाह ने रखा था, अल्लाह ने उसी औरत को उसकी हिफाजत के लिए मुसल्लत कर दिया कि वो क्यों हो गई हिफाजत करने के लिए, कि पूरी बादशाह का निजाम उसको मारने की सोच रहा है और अल्लाह पाक उसी औरत का इस्तेमाल कर रहा है कमरे बनाने के लिए कि जिसको मारने के लिए मुकर रखी गई थी। ये कौन करता है? ये अल्लाह करते हैं कि इंसानों की नेकियों का असर पड़ता है, और अगर खुदा ना करे अगर कोई ऐसा ना हो तो फिर बचने मुश्किल होते हैं। और ये उस जमाने की खाली बात नहीं है, इस जमाने की 14वीं सदी में भी जिन बच्चों ने अपने आप को इन चीजों में महफूज कर लिया, वो दुनिया के मुल्कों में काम करते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों पर काम करते हैं। ऐसे संभले तो अभी मुझे ओमान एयरलाइंस से आ रहा था, ओमान एयरलाइंस से तो एक बच्चा घना तक से कर रहा था, इतना खूबसूरत बच्चा, मैं हैरत कर रहा था उसकी खूबसूरती पर, अरब था। तो मैंने उससे दुआ सलाम की, उसने मुझसे दुआ सलाम की, मेरा खाली वक्त था तो उसके पास गपशप करने के लिए बैठ गया। तो वो गपशप के माहौल में उसने मुझे कहा मुझसे मेरी दुआ करो। मैंने कहा क्या दुआ करो? अरब है कब मैंने ये पढ़ाई की है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं इस हवाई जहाज की नौकरी पर लगा। वो खाना तकसीम करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? खाना वाना तकसीम करते हैं वो लड़कियां अक्सर होती है। तो कहने लगी, वो कहने लगा कि लड़कियों की फिजा में रह रहा हूँ, बहुत अपने आप को बचाए हुए हो, बहुत बचाने की कोशिश में हो। अल्लाह का एहसान है मौलाना कि इस खूबसूरत फिजा में मैं बचा हुआ हूँ, मेरा अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अगर अल्लाह मुझे ना बचाता तो मेरी कोई सबील ऐसी नहीं है कि मैं बचवा हूँ, बस अपनी इस गंदल दलदल से निकलना चाहता हूँ, इस कीचड़ से निकलना चाहता हूँ। आप मुझे दुआ फरमा दे, अल्लाह मुझे इससे आफियत के साथ छुड़ा दे। हवाई जहाज में है, अकेला है और हवा फिजाओं में उड़ रहा है और उसको अपने ईमान की फिक्र है। मैं 14वीं सदी की बात नहीं सुना रहा हूँ। जब एक तरबियत अच्छी हो जाती है तो वो इन फिजाओं में भी अपने आप को संभाल लेता है कि वहां मैं कैसे संभाल। अभी हम लोग बारबाडोस गए थे, बारबाडोस में कुछ महीनों पहले, तो पड़ोस के मुल्क के कुछ बच्चे आए और कहने लगे भाई साहब हमारी हॉस्टल है वहाँ आने। क्या बात है? बोला ना ये बारबाडोस तो वो मुल्क है कि जहाँ यहाँ लोग दुनिया के लोग गुनाह करने के लिए आते हैं। वहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम है और ट्रेन आ गए, वो तुम्हारा ब्रेन लाला वो उसी लगे कर दो खराफा, तो ये वहाँ लिखा हुआ था ब्रेन लाला रोड का सर लिखा हुआ। मैं तो नहीं जानता हूँ क्या चीज़ के लिए वो लिखा हुआ, तो लोग फोटो ले रहे और पता नहीं बिल्कुल लंगी जिंदगी। तो वहाँ हम लोग जब वहाँ पहुँचे वहाँ से आगे बार पढ़ो तो कॉलेज का बच्चा है और कहने लगा हमारे कॉलेज में इतने मुल्कों के लोग पढ़ते हैं और हमारा मुल्क आजाद है, जिसको जैसे बच्चों से छोड़ छोड़ पाते हो। देखिए क्या हो गई, समुद्र पार लोग रहते हैं, 24 घंटे हमारी फ्लाइट चल, कितने घंटे 24 घंटे की फ्लाइट चलकर हम वहां पहुंचे, समुद्र पार वेस्ट इंडीज में हम पहुंचे। वहां कोई बच्चों को पूछने वाला नहीं। अभी वो बशीर साहब भी कह रहे थे विद्यानगर में, विद्यानगर में भाई वो 500 बच्चे मुसलमानों के हैं और बाहर से आते हैं, वो इतने मुझे ताज्जुब की चीज नहीं लगी। वो समुद्र पार 24 घंटे की फ्लाइट चलकर वहां उन बच्चों में वो चीज लगी हुई है कि वो मस्जिद में आकर कह रहा है हमारा कोई प्रोग्राम कर दो, हमसे कोई बात कर दो। फिर हमारे साथ डॉक्टर अटेंड करा दी थे, उनको फौरन भेज दिया कॉलेज में कि समुद्र पार है। ये कौन बच्चे हैं कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई के जमाने में अपने आप को संभालने के साथ चलाया था, अब इतने दूर जाकर के वो संभालने के फिजाओं में है। ऐसे बच्चे, फिर ऐसे बच्चे ऐसे संभलते हैं, ऐसे संभलते हैं कि फिर माशाल्लाह अल्लाह इन्हें संभलने के असबाब पैदा कर देते हैं, इनको काबिले एतमाद बनाते हैं, काबिले एतमाद भरोसा लायक बनाते हैं। तो ये मुबारक मेहनत के रास्ते से आप जरा को जो जमा करते हैं वो खाली फॉर्मेलिटी की कुछ बातें सुनाने के लिए नहीं, बल्कि आप हजरत अपनी पढ़ाई के माहौल में गुजश्ता जमाने के मुकाबले में अभी स्कूल और कॉलेज का माहौल बहुत ज्यादा अफरत का है। आप भी बचना चाहें तो भी बचना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। खुदा न करे अगर हमारे बच्चे उन बातों में मुबतला हो गए तो हमारे हमारे बच्चों की तो मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, इनकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, इनसे अल्लाह नाराज हो जाएगा, और उसके बाद ये अपनी जिंदगी में इन खुराफात को अगर जमा करते हुए बड़े हुए तो फिर अल्लाह का आगे इनको सुख की जिंदगी इनकी ले लेगा। ये सारी बुराइयों से अल्लाह करिए हमारे बच्चे बच जाए और एक अच्छी जिंदगी बन पाए, तो इसका एहसास एक एक के अंदर आ जाए, इसके लिए आप अल्लाह को यहां हम जोड़ते हैं। हाँ ये खाली अपने पास, और जिन बच्चों को एहसास हो जाता है ना वो आज भी एहसास जिम्मेदारी के साथ ही जीता है चाहे वो अकेला हो। मुझे अजीब, हम लोग तरक्की में जाने लगे हैं तुर्की में, हमें मस्जिद में एहसास जिम्मेदारी है, वो छोटे बच्चे में आता है वो हिल जाएगा और सबको हिला कर रख देगा। ऐसा नहीं है कि खाली बड़े बड़े बच्चे, बुजुर्ग के जमाने में तो बच्चों के वाकयात है कि एहसास जिम्मेदारी आ गया छोटे बच्चे में तो उसने इनकलाब पैदा कर दिया, कोहराम मचा दिया
चढ़ा और मदीने में आवाज लगाई।
जमाने के बच्चे हुनर सीखते थे, क्या सीखते थे, दौड़ना भी एक हुनर है, दौड़ना भी तैरना सीखते थे, तैरना भी एक हुनर है, और घोड़े चलाना एक हुनर है, तीर चलाना एक हुनर है। हमें तरकीब दी गई कि तुम अपने बच्चों को घोड़े चलाना सिखाओ, तैरना सिखाओ, तीर चलाना सिखाओ, सिखाना। तो इतना तेज में दौड़ते थे कि अरबी घोड़ा, अरबी घोड़ा जो होता है उसकी दुनिया में दौड़ सबसे ज्यादा मशहूर, जो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। या अल्लाह, ये 12 साल का बच्चा ऐसा खतरनाक दौड़ता था कि अरबी घोड़ा उससे आगे नहीं निकल सकता था, वो कैसे दौड़ता होगा। तो वो 12 साल, आज के लोग फखर से कहते हैं मेरा बच्चा कंप्यूटर चलाना जानता है, लोग मोबाइल चला, वो फखर से बच्चे कहते हैं। वो जमाने में हुनर सीखते थे, हुनर, वो 12 साल के बच्चे ने वो हुनर जो सीखा, वो दौड़ना शुरू किया। जब काफिला भाग गया था, उनको पकड़ा, देखो अच्छा काफिले वाले भाग रहे हैं और उनके साथ ऊंट भी है, उसने तीर चलाना सीखा था, तो तीर चलाना सीखा था, उसने क्या किया, धनाधन तीर बरसाना शुरू किया। एकदम इतनी तेजी से तीर उसने बरसाए, इतनी तेजी के साथ तीर बरसाए, वो काफिले वाले ऐसा समझे कि तीर फेंकने वाला एक आदमी नहीं बल्कि वाले लोग टोला टोला। तो और भागे और भागे और भागे इतनी तेजी से कि मिनट में टोला हमें पता नहीं, हालांकि वो कितने लोग थे पीछे, कितने लोग थे, अरे एक लोग नहीं थे, कौन था, बच्चा था, लोग थे, अरे भाई लोग नहीं थे, बच्चा था, एक बच्चा था, लेकिन वो समझ नहीं सके कि बच्चा है या लोग है, वो समझे लोग है और भागते गए। वो कहने लगे कि इतना मैंने उनको मार मार कर भगाया कि वो खूब आगे निकल गए, हुजूर के ऊंट भी पीछे रह गए, भागते भागते उनकी चादरें भी ऊपर से निकल गई, चादरें भी गिर गई, सामान भी उनका गिर गया, लेकिन मेरी तमन्ना थी और उनका पकड़, ऊंट भी तो मिल गया मुझे, सब मिल गया, लेकिन और मुझे पकड़ने की नियत हुई, और पीछे भाग रहा था। तो इतने में एक पीछे देखा तो देखा, ओह हो, ये तो छोटा सा बच्चा है, ये तो छोटा सा बच्चा है, 12 साल का, इतने इसने हमको इतना भगा दिया। तो एकदम उनकी नियत खराब हो गई और उसने अपने साथियों को कहा, हम तो जिसको डर कर भागते हैं वो टोला नहीं, वो तो कौन है, बोलो, अरे बोलो कौन है, वो तो 12 साल का बच्चा है, हम तो डर के एकदम घोड़े मोड़ कर आए और मुझे पकड़ने के लिए आए। तो मैंने समझ गया कि अच्छा, वो कहने लगे कि जब मैं तीर चला रहा था तो पीछे चलता था तो मैं किसी झाड़ के पीछे छुप जाता, किसी पत्थर के पीछे छुप जाता, चलो कितना टैलेंट वो बच्चा होगा, ये सारा मुझे करना है, उसके दिमाग में कहां से आया होगा। जब इन दिमागों में भूसा नहीं होता तो अच्छी बात नहीं होती है, जब इस दिमाग में भूसा होता है तो अच्छी बात नहीं होती है। वो दिमाग उन चीजों से खाली थे तो वक्त पर अच्छी अच्छी बातें आ जाती थी, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। वो बच्चे कह रहा था कि जब वो मुड़ कर देखते थे तो एकदम उन्हें पत्थर के पीछे छुप जाता एकदम, लेकिन एक मतलब उन्होंने मुझे देख लिया और देखने के बाद मेरा पीछा किया तो मैं समझ गया कि वो मेरे पीछे आएंगे। मैं एकदम पहाड़ पर चढ़ गया, वो नीचे खड़े थे। फिर मैंने 12 साल का बच्चा, मैंने उनको मेरे पास आने नहीं दिया, मैंने बैग छोड़ कर दिया, क्या छोड़ कर दिया, अभी वो बच्चे को तो कह रहे थे कि भाई कारोबारी सुनाने के लिए हमारा बच्चा को कारोबारी सुनाने में हिम्मत नहीं होता। वो कहने लगा मैंने तकरीर शुरू कर दी, मैं भी क्या तकरीर शुरू की, क्या मैंने तकरीर शुरू की, ओ लोगो तुम्हें बताया मैं कौन हूँ, अपना रॉक बताया, तुम्हें बताया मैं कौन हूँ, अच्छा मैं बता कौन है, ये कौन बात कर रहा है, जरा जोर से बोलो कौन बात कर रहा है, प्रोफेसर साहब, तो कौन बात कर रहे हैं, मेरे पास नहीं आ सकता, वो मेरे तीर से बच नहीं सकता, इसलिए मुझे पकड़ने के लिए पार पार बैठे हुए थे, एक बच्चा है, थोड़ा सा बच्चा, शामी बच्चा, भूल के शाम का ईशा के बाद वो मुझे आकर कहने लगा कि मौलवी साहब मुझे कुरान शरीफ पढ़ने। मैंने उनसे कहा बहुत अच्छी बात है कुरान शरीफ पढ़ लो। वो कहने लगा हमारे यहाँ कोई कुरान नहीं पढ़ा था। वहां उसकी उम्र 13 साल की थी। कितने साल की? सिर्फ 13 साल की उम्र थी। तो इस 13 साल की उम्र में वो बच्चा कहने लगा यहाँ कोई कुरान नहीं पढ़ा था और मैं खुद मजदूरी में जाता हूँ। या अल्लाह तो मजदूरी करने जाता है। और तुर्की की हिम्मत ये थी कि हर आदमी 12 घंटे काम करता है। कितने घंटे करो? 12 घंटे आम पब्लिक काम करती है। हमने उसको पूछा कितने घंटे काम करता है? उसने कहा सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक मैं मजदूरी करता हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक। हमने उनको पूछा कि भाई तुझे मजदूरी करने की क्या जरूरत पड़ी? तो उसने कहा कि हम 6 भाई बहन हैं, मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ 6 भाई बहन में, और मेरे अब्बा यहाँ नहीं है तो हमें और बात चुप कर तेरे माँ बाप का है। उसने कहा हम उनके शाम में गए। तो मैंने उनसे पूछा कि वो मजदूरी नहीं करते? तो एक दिन उन्होंने लगा कहने लगा कि भाई साहब बात यह है कि हमारे वहां जो हालात आए उसमें हमारा घर भी टूट गया और मेरे अब्बा का आधा जिस्म खत्म हो गया। अब वो बिस्तर में है। अब मैं वहां अपने चचा के साथ हिजरत करके वहां से यहाँ आया हूँ और यहाँ आकर रोजाना मजदूरी करता हूँ। मुझे तुर्की 600 रुपये महीने के मिलते हैं। 600 रुपये मैं 100 रुपये अपने पास रखता हूँ और 500 रुपये अपने माँ बाप के भेजता हूँ अपने माँ बाप को वहाँ। तो मैं इसलिए मजदूरी मुझे करनी पड़ती है। मुझे बहुत हैरत हुई कि 16 साल का बच्चा इतनी 13 साल का बच्चा इतनी बड़ी बात कह रहा है। और फिर वो मुझे रात को आकर कहने लगा, हमारी जमात पूरी कर ली थी, कि मुझे कुरान शरीफ पढ़ना है। तो मैंने कहा कि भाई कुरान शरीफ तुझे यहाँ कौन पढ़ाएगा? मैंने कहा इमाम साहब से अपने बात करेंगे। तो इमाम साहब से बात किया तो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पड़ोस के मस्जिद के इमाम मेरे दोस्त थे, दुआ सलाम अच्छी हो गई। मैंने कहा चलो तुम्हें उनके पास भेजता हूँ, हो सकता है वो पढ़ा दे। तो वो इमाम साहब ने कहा मैं रात को 10 बजे इसको कुरान पढ़ा सकता हूँ। वो बच्चे को हमने कहा कि वो तो रात को 10 बजे कह रहे हैं, तो 8 बजे 12 घंटे नौकरी करके आएगा क्या कर? क्या मौलवी साहब कोई मसला नहीं, मैं रात को 10 बजे कुरान पढ़ने जाऊँगा। हम तो हैरत कर गए कि ये बच्चा कितना आजमा वाला।